ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ताजन्मश्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंध का पांचवा अध्याय, अध्याय का नाम है भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश, और टेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 23। मेरे पीछे दुराई न ब्राह्मणैस्तुले भूतमन्यात् पश्यामि विप्रा किमतः परं तु यस्मिन् निर्भिप्रहुतं श्रद्धयाहम् अश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे न ब्राह्मणैस्तुले भूतमन्यात् पश्यामि विप्रा किमतः परं तु यस्मिन् निर्भिप्रहुतं श्रद्धयाहम् अश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे जो थर्ड लाइन में तथाह है तो उसके म भी पढ़ना है तथाहम, और यहाँ पर अश्नामी करना है। न ब्राह्मणैस्तुले भूतमन्यात् पश्यामि विप्रः किमतः परं तु यस्मिन् निर्भिप्रहुतं प्रहुतं श्रद्धयाहम् अश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे न नहीं ब्राह्मण ही ब्राह्मणों के तुलये मैं समान मानता हूँ। भूतां जीव अन्यत अन्य पश्यामि मैं देखता हूँ। विप्रह हे समागत ब्राह्मणों किम कुछ भी अतः ब्राह्मणों से परम श्रेष्ठ तो निश्चय ही यस्मिन जिनमें से निर्भी मनुष्यों के द्वारा प्रहुतम यज्ञों के विधिवत संपन्न होने पर दान किया गया भोजन श्रद्धया श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक अहम मैं अश्नामी खाता हूँ। कामम परम प्रसन्नता पूर्वक न नहीं, तथा उस प्रकार अग्निहोत्रे अग्नि यज्ञ में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद की। हे पूज्य ब्राह्मणों, जहाँ तक मेरा संबंध है, इस संसार में ब्राह्मणों के तुल्य या उनसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। मैं उनके तुलना योग्य किसी को नहीं पाता। वैदिक नियमों के अनुसार यज्ञ करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है, उसे जब लोग समझ लेते हैं तो वे मेरे निमित्त अर्पित भोग अत्यंत श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक ब्राह्मण मुख के द्वारा मुझे प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रदत्त भोजन को मैं अत्यंत प्रसन्न होकर ग्रहण करता हूँ। निस्संदेह इस प्रकार से प्रदत्त भोजन को मैं अग्निहोत्र में होम किए गए भोजन की अपेक्षा अधिक प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता हूँ। तात्पर्य, वैदिक पद्धति के अनुसार यज्ञ समाप्ति के पश्चात ब्राह्मणों को आमंत्रित करके उच्छिष्ट भोजन खिलाया जाता है। जब ब्राह्मण इस भोजन को खाते हैं तो यह माना जाता है कि परमेश्वर स्वयं इसे ग्रहण कर रहे हैं। अतः योग्य ब्राह्मणों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। विकास की चरम सिद्धि ब्राह्मण पद पर है। ऐसी सभ्यता जो ब्राह्मण संस्कृति पर आधारित नहीं है या जिसका मार्गदर्शन ब्राह्मण नहीं करते, वह निश्चय ही निंदनीय है। आजकल मानवीय सभ्यता इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, अतः अधिक से अधिक लोग विभिन्न वस्तुओं के आदि हो रहे हैं। ब्राह्मण संस्कृति का आदर कोई भी नहीं करता। दानवी सभ्यता उग्र कर्म के प्रति आसक्त है और अगाध काम वासनाओं की तृप्ति के लिए बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की जाती है। फलस्वरूप जनता सरकारी करों के कारण पीड़ित रहती है। लोग अधार्मिक हैं और भगवद्गीता में बताए गए यज्ञों को संपन्न नहीं करते। यज्ञात भवति पर्जन्यः, यज्ञ करने से बादल बनते हैं और पानी बरसता है और प्रचुर वर्षा के कारण प्रभुत अन्न उत्पन्न होता है। यदि राज्य का संचालन ब्राह्मण करें तो समाज भी भगवद्गीता के नियमों का पालन सॉरी यदि राज्य का संचालन ब्राह्मण करें तो समाज भी भगवद्गीता के नियमों का पालन करें, सभी लोग सुखी होंगे। अन्नाद भवन्ति भूतानि, जब पशु तथा मनुष्य प्रचुर अन्न खाते हैं तो वे बलिष्ठ होते हैं और उनके हृदय तथा मस्तिष्क शांत रहते हैं, तब वे आध्यात्मिक जीवन बिता सकते हैं जो जीवन का परम लक्ष्य है। न ब्राह्मणे तुलये भूतमन्यत पश्यामि विप्रः किमतः परंतु यस्मिन् निर्भिः प्रहुतं श्रद्धयाहं अश्नामि कामं नथाग्निहोत्रे। तो उसी कंटिन्यूएशन में सब्जेक्ट मैटर है। भगवान ऋषभदेव जो भगवान के अंशावतार थे, अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकार देकर और जंगल में चले गए थे, लेकिन एक बार घूमते घूमते एक बड़ा उनके पुत्रों ने ब्राह्मणों की सहायता से आर्यावर्त गंगा और जमुना के जो बीच का भाग होता है उस आर्यावर्त उस क्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे। उनके पुत्र जिसमें सर्वश्रेष्ठ से सबसे ज्येष्ठ थे भरत महाराज, राजर्षि भरत। तो यदृक्षया उस यज्ञ भूमि में घूमते घूमते भगवान ऋषभ देव आ गए। तो सबको, सबके लिए, संपूर्ण प्रजा के लिए, ब्राह्मणों के लिए, और विशिष्ट कर उनके जो अपने पुत्रों के लिए उपदेश कर रहे थे। पुत्रों में से आप लोग जानते हैं उनके 100 पुत्र थे। तो 100 पुत्रों में 9 साधु हो गए थे, महात्मा हो गए थे, सन्यासी हो गए थे। 81 पुत्र थे वो कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए थे, और 10 क्षत्रिय थे। तो यह जो यज्ञ हो रहा था वो 10 जो उनके पुत्र थे, भरत जिसके श्रेष्ठ थे, उनके अध्यक्षता में यज्ञ हो रहा था। तो भगवान ऋषभ देव वहां आ गए और विशेष अपने पुत्रों के लिए और समान रूप से सभी प्रजा के लिए, सभी ब्राह्मणों के लिए उन्होंने उपदेश किया है। तो उपदेश का आज का जो क्रम है, इसमें भगवान ऋषभदेव ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन करते हैं। न ब्राह्मणे तुलये भूत मन्यत, अन्य प्राणियों की तुलना मैं ब्राह्मण से नहीं करता हूँ, सम्मान नहीं कर सकता। पश्चामि विप्रः किमतः परम तुम, ब्राह्मणों सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ। तो ब्राह्मणों के श्रेष्ठत्व का वर्णन यहाँ पर भगवान ऋषभ देव करते हैं, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं। इसी क्रम में भगवान ऋषभ देव ने यह बात कही है कि मेरे प्रिय पुत्रों, ब्राह्मणों के मैं सुयोग्य ब्राह्मणों के संरक्षण में तुम लोगों को मैं रखा हूं, तुम लोगों को मैंने राज्य दिया, राज्य का संचालन करने के लिए, लेकिन तुम्हारे संरक्षक ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मणों के हाथ में तुम लोगों को सौंपा हूं। इसीलिए हर कीमत चुकाकर तुम ब्राह्मणों की सेवा तुम लोगों को करना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा तुम्हें जरूर करना चाहिए, करना ही है। और अभी भगवान ने, ऋषभ देव ने कहा है कि ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों का सत्कार, ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों का आदर देवता से भी ज्यादा होनी चाहिए। देवता पूज्य हैं हम लोगों के लिए, लेकिन देव तुल्य ही ब्राह्मण नहीं है, देवताओं से भी ज्यादा पूज्य हैं। इसलिए तुम लोगों को मैंने उन ब्राह्मणों के संरक्षण में रखा है। तो पुत्रों इस बात भूल न जाना, ब्राह्मणों की सेवा होनी चाहिए और ब्राह्मणों का आदर होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए। तो यहां पर कहते हैं कि न ब्राह्मणे स्तुले, भगवान ऋषभ देव, मैं ब्राह्मणों की समता किसी अन्य प्राणी से नहीं करता हूं, क्योंकि ब्राह्मण बहुत से श्रेष्ठ हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं। और एक वैदिक वैदिक स्टेटमेंट का एक वैदिक जो कथन है उसमें भगवान इस श्लोक में कहते हैं, यो यह अस्मिन यस्मिन निर्भी प्रहुतम श्रद्धया। प्रभुपादी तात्पर्य में और अनुवाद में इसी बात को कहते हैं कि प्राय जो यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ की परिसमाप्ति सफलता तब मानी जाती है कि यज्ञ के अंत में ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाए और ब्राह्मणों का सत्कार किया जाए, ब्राह्मणों को विशेष रूप से सम्पूर्ण बढ़िया भोजन खिलाया जाए। जब तक किसी यज्ञ में ब्राह्मण भोजन नहीं होता है, ब्राह्मणों को नहीं खिलाया जाता है और दान से ब्राह्मणों को संतुष्ट नहीं किया जाता है, तो वह सफल यज्ञ नहीं माना जाता है और उसका वास्तविक जो फल है वही नहीं, वह भी नहीं मिलता है। इसीलिए वैदिक प्रिपार्टी है इस कल्चर में कि यज्ञ में भगवान को नैवेद्य अर्पित किया जाता है और जो अवशिष्ट बचता है यज्ञ का, उसको ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। यहाँ भगवान कहते हैं यस्मिन निर्भी प्रहुतम श्रद्धया, यदि श्रद्धा और प्रेम से कोई ब्राह्मणों को खिलाता है, बैठा कर खिलाता है, तो भगवान कहते हैं अश्नामी, इसमें शब्द तीसरे चौथे लाइन का है, म उधर होना चाहिए था। अश्नामी, अश्नामी मतलब होता है खाता हूं। यह शब्द से आप लोगों को परिचित होना चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मन। भगवान कहते हैं कि यदि यज्ञ के अंत में ब्राह्मणों को कुछ खिलाया जाता है, उनके मुंह में कुछ आहुति दी जाती है, तो कृष्ण कहते हैं कि अश्नामी मैं खाता हूं। ये तो ब्राह्मणों को खिलाया गया तो केवल खाता ही नहीं, काम यथेष्ट हमारी जितनी प्रसन्नता होती है, जितना हम संतुष्टि होती है, यदि ब्राह्मणों खाते हैं और ब्राह्मणों को संतुष्टि होती है, उनको अच्छा भोजन लगता है, तो ब्राह्मणों को तो प्रसन्नता होती है, लेकिन भगवान कहते हैं कामम अश्नामी, मैं इतनी तृप्ति, इतना हमको स्वाद उसमें मिलता है, इतना टेस्ट मिलता है, भगवान खाते हैं। भगवान को खिलाना है तो कैसे खिलाना है, दो विधि भगवान उसकी भी चर्चा, न तथा अग्निहोत्रे, वैदिक शुद्ध मंत्रों का, भगवान के दो मुंह है, एक ब्राह्मण मुंह होते हैं, ब्राह्मणों का मुंह भगवान का मुंह होता है, ब्राह्मण भगवान के मुंह होते हैं और अग्नि भी भगवान के मुंह है। तो अग्नि में मंत्रों का शुद्ध रूप में मंत्र पढ़कर जो आहुति दी जाती है, अर्पित किया जाता है, तो उसको भी भगवान खाते हैं। लेकिन कहते न तथा अग्निहोत्र, अग्निहोत्र करके यज्ञ में जो आहुति दी जाती है उसको भी मैं खाता हूं, लेकिन ब्राह्मणों के मुंह में जो आहुति दी जाती है उससे जितनी मेरी प्रसन्नता होती है उतना आग में डालने से नहीं। तो यहां पर अपने पुत्रों के देह से यस्मिन निर्भी मनुष्य लोग यज्ञ करते हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों को बढ़िया से खिलाते हैं, आमंत्रित करके आदर से अच्छी चीजें खिलाते हैं, तो मैं उसको खाता हूं। यहां पर उपलक्षण से बात है, यहां तो एक बात की चर्चा भगवान की है खाने की, उपलक्षण के ब्राह्मणों को कुछ भी अर्पित किया जाता है तो उससे भगवान ज्यादा संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण को प्रणाम किया जाए तो जितना अन्य देवताओं को प्रणाम किया जाता है, भगवान को प्रणाम किया जाता है, उससे भी ज्यादा भगवान तब खुश होते हैं जब किसी ब्राह्मण को नमस्कार किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, अथवा आप डायरेक्ट भी भगवान को किसी देवता को दे सकते हैं, लेकिन कोई वस्तु देते हैं, सामान देते हैं, कपड़ा देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, तो भगवान को विशेष प्रसन्नता होती है। यहाँ तो भगवान अश्नामी काम बड़ी प्रसन्नता के साथ, यदि ब्राह्मण को कोई दान देता है, पैसा देता है, कपड़ा देता है, पानी देता है, तो वो भगवान ग्रहण करते हैं। पश्याम अश्नामी कामम न तथा अग्निहोत्रे, अग्निहोत्र से भी मेरी प्रसन्नता होती है, वो अभी विधि है, उसे भी मैं ग्रहण करता हूं, लेकिन जितनी प्रसन्नता के साथ, जितनी सेटिस्फेक्शन हमको होता है, संतोष होता है, जितनी तृप्ति होती है ब्राह्मणों को खाते देखकर, उतना और अन्य किसी अग्निहोत्र में आहुति डालने से नहीं। इसीलिए वो कहते हैं कि बेटा मैं तुम लोगों को ब्राह्मणों के संरक्षण में गया हूं, मैं संन्यास ले लिया है, वानप्रस्थ ले, मैं जंगलों में गया, लेकिन तुमको मैं ब्राह्मणों के संरक्षण में रखा हूं, तो इसीलिए बेटा किसी भी कीमत पर ब्राह्मणों की सेवा होनी ही चाहिए, ब्राह्मणों का सत्कार होना चाहिए, स्वप्न में भी भूल कर भी ब्राह्मणों का तुम तिरस्कार मत करना। यह तो भगवान कह दिए श्रेष्ठत्व, ब्राह्मणों का श्रेष्ठत्व, वो क्यों इतना श्रेष्ठ होते हैं, क्यों आप उसे प्रसन्न होते हैं, तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं उनका निष्प्रियत्व, निष्प्रिय रहते हैं ब्राह्मण, अवितम ब्राह्मणों को देने को संतुष्ट करने की महिमा तो भगवान कह दे रही शब्द है, तो थोड़ा कॉमन बात है, ब्राह्मण तो यहां भी हम लोग को ले जाते हैं, इस मंदिर में उस जन बहुत दान की महिमा करते हैं, कहते हैं, आपको दर्शन के ले जाते हैं, वहां ले जाते हैं, राधा कुंड ले जाते हैं, चाहे तो ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन, क्यों ब्राह्मण इतने पूज्य हैं, क्यों उनका श्रेष्ठत्व तो क्या है, वो निष्प्रियता, वे भगवान के अतिरिक्त, भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई भी लौकिक अथवा पारलौकिक भोग की कामना नहीं करते। ब्राह्मण मतलब उसमें लौकिक अथवा पारलौकिक किसी भी प्रकार की भोग की इच्छा, सुख की इच्छा नहीं, यहाँ के पृथ्वी के सुख के प्रति निष्प्रिय रहते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग सुनते हैं स्वर्ग में भी सुख मिलता है, जो पारलौकिक सुख है उसके प्रति भी उन निष्प्रिय होते हैं, थोड़ी भी आसक्ति, उससे थोड़ा आकर्षण ही उनका नहीं होता है। भगवान इस क्रम में भगवान ऋषभ देव ब्राह्मणों के 8 गुणों की चर्चा करते हैं। सत्व निरंतर परम पवित्र सत्व गुण में स्थित होते हैं। ब्राह्मणों को खिलाना है, ब्राह्मणों को देना है, ब्राह्मणों को सत्कार करना है, ब्राह्मणों को दान देना है, तो थोड़ा जान लेना चाहिए कि कुछ ब्राह्मण क्या हो गया है, क्या वो मंत्र पढ़ लिए हैं कि इतना वो पवित्र होते हैं, उनको देने से भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान कहते हैं धृता तनु उसती पुराणी, मेरा जो दिव्य पवित्र रूप है, विग्रह है, वेद रूप में उस वेद को धारण करते हैं। तनु उसती पुराणी, मेरे दिव्य शाश्वत जो मेरा ही विग्रह है, वेद वैदिक ज्ञान ब्राह्मण लोग उसको धारण करते हैं, वेद को पढ़ते हैं। और इसके साथ भगवान ने ब्राह्मणों के 8 गुणों की चर्चा करते हैं। उसमें है सत्व, सत्व गुण में स्थित रहते हैं। और फिर सम, उनमें सम होता, सम होता है दम, सम को भागवतम में सम समझते हैं ना, आप लोग ने ब्राह्मण इनिशिएशन लिया होगा था, लेने वाले होंगे, तो एक श्लोक नितांत रूप से आशा की जाती है आप लोगों को याद होना चाहिए अथवा कम से कम उसका अर्थ जानना चाहिए। भगवान भगवद गीता में ब्राह्मणों के 9 है ना, 9 लक्षण है ना, समो दमह तपह शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम। सम, उसमें सम, तो यहां पर भगवान ऋषभ देव कहते हैं गुण होता है कि सम, सम का क्या अर्थ होता है, भागवतम में कहा है सम्मो मनिष्ठता बुद्धे, बुद्धि जब एकांतिक रूप से भगवान के चरणों में जिस ब्राह्मण का लग जाता है तो समझ लेते सम को प्राप्त, सम्मो मनिष्ठता बुद्धे, मुझ में मेरी भक्त की बुद्धि जब प्रतिष्ठित हो जाती है तो उसकी सम प्रतिष्ठित होता है, सम्मो मनिष्ठता बुद्धे। तो भगवान यहां पर ऋषभ देव कहते हैं ब्राह्मण मतलब उसका मन, उसकी इंद्रियां, उसका शरीर पूरा पूरा भगवान में लगा रहता है, मन की जो वृत्ति है फ्लो भगवान के और भगवान के भक्ति के घेरा के अंदर उसका जाता ही नहीं है, उसका चिंतन ही नहीं जाता है। समो मनिष्ठता बुद्धि, बुद्धि का पूर्ण रूप से मुझ में लग जाना, इसको सम कहते हैं। दमह, दमह इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह और सब इंद्रियों पर कंट्रोल होता है। और फिर सत्य, वो सत्य भाषण करता है, सत्य में यथार्थ भाषण करता है। और उसमें एक गुण होता है अनुग्रहस्य, और उसमें एक गुण होता है, एक उसमें लक्षण होते हैं अनुग्रह, उसमें होता है अनुग्रह मतलब कृपा, दया करुणा अनुकंपा अनुग्रह, इसको कहते हैं अनुकूल रूप से किसी को पकड़ना, दया मर्सी। तो उसमें अनुग्रह होता है, तप भगवान की भक्ति के लिए स्वेच्छा से कुछ इनकन्वीनियंट को स्वीकार करता है, इसको तपस्या करते हैं। जैसे आप लोगों को मंगलारती में आना है, आप आ रहे हैं तो स्नान करते हैं तो ऐसा मत समझिए कि मंगलारती में आएंगे तो आपको ठंडा नहीं लगेगा, ठंडा लगता ही है, ठंडा पानी है तो। लेकिन उस इनकन्वीनियंट को, चूंकि आप लोग मंगलारती स्वीकार करना है तो ठंडे पानी के नल के अंदर आप खड़ा हो जाते हैं अथवा बैठ जाते हैं, इसको तपस्या कहते हैं। भक्ति के लिए भगवान के विग्रह के सामने जाना है तो स्नान करना तो अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं कि भक्त हो गए तो उनको अच्छा लगता है, उनको भी थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है, ठंडा लगता है, लेकिन भगवान की सेवा करना है तो स्नान करेंगे। तो भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए स्वेच्छा से कुछ कष्ट इनकन्वीनियंस स्वीकार किया जाता है, उसको तपस्या कहते हैं। तो तपस्वी होता है ब्राह्मण। और तितिक्षा, सहिष्णु होता है, मान अपमान सर्दी गर्मी वो सहता है। और अनुभवस्य, और भगवान कहते हैं, ऋषभ देव कहते हैं, अनुभव होता है वो गॉड रियलाइज्ड होता है, भगवत साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार से वो संपन्न होता है। तो ऐसे अपने पुत्रों को उपदेश रहे कि हे मेरे प्रिय पुत्रों, कृपा करके तुम ब्राह्मणों का सत्कार करते रहना। तो यहाँ आठ गुण ब्राह्मणों के भगवान ने बता दिया, यह गुण से संपन्न होता है प्रत्येक ब्राह्मण। कोई ब्राह्मण अपने को क्लेम करता है तो उसे अपेक्षा की जाती है भागवतम का या ऋषभ देव का या स्टैंडर्ड अपनाया जाए। तो किसी भी ब्राह्मण में लौकिक अथवा पारलौकिक, लौकिक से मतलब पृथ्वी पर जो सुख है, सुविधा है, उसके प्रति अथवा इसके ऊपर पारलौकिक, दूसरे हम सुनते हैं स्वर्ग में इतना सुख है, स्वर्ग में ऐसा वातावरण है, वैसा है, वहां के भी प्रति कोई आकर्षण नहीं, पृथ्वी के सुखों के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, उसके मन में थोड़ी भी वासना नहीं होनी चाहिए भौतिक सुखों के लिए, लौकिक अथवा पारलौकिक, केवल उसमें वासना एकमात्र भगवत सेवा के लिए होना चाहिए। उसके मन में हमेशा यह चिंतन होता रहता है कि वो कैसे चाहता है कि किसी परिवेश में जाऊं, वहां मैं भगवान की सेवा का जो सेवा का अवसर मुझे मिल जाए। तो इस तरह के ब्राह्मण हैं, ये पूज्य हैं। और यदि ऐसे ब्राह्मणों के मुंह में कोई आहुति दी जाती है, उसमें कुछ डाला जाता है, तो आपातः बाहर से तो देखने में लगता है कि ब्राह्मण ही खा जा रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण तो खाते हैं लेकिन वास्तव में मैं खाता हूं। अष्टनामी शब्द का खाता हूं, और खाता हूं कामम, बड़ी प्रसन्नता के साथ। कभी कभी हम लोग अप्रसन्नता के अनुसार भी खाते हैं, और भगवान खिचड़ी ही दे दिए हैं, कितना भी बहुत मसाला भी है, तेल भी है, लेकिन अब वो सही भरना ही है, नहीं तो फिर 3 बजे से पहले प्रसाद नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान वैसे नहीं, काम बड़े, जैसे फीस्ट के दिन आप लोग प्रेम से खाते हैं, बड़ी उत्सुकता रहती है कि नेक्स्ट आइटम क्या है, कैसे वह कब आएगा, उसका भी आस्वादन करना है, बल्कि थोड़ा रिजर्व रखते हैं जगह, अंत में रसगुल्ला आ जाएगा, चाहे खीर आ जाएगा, तो उसके लिए भी जगह। ऐसा नहीं कि भात से और रोटी से पेट भर जाए और तब तक आ गया कोई मिष्ठान आ गया तो पछताते हैं कि अरे कम खाया होता तो ज्यादा। तो भगवान यहाँ पर अष्टनामी कामम, मैं खाता हूँ, और बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी संतुष्टि के साथ यदि ब्राह्मणों के मुख में दिया जाता है। न तथा अग्निहोत्रे, अग्नि में आहुति दी जाती है तो उतनी मुझे प्रसन्नता नहीं होती है जितनी ब्राह्मणों के मुंह में आहुति देने से मुझको प्रसन्नता होती है। त्यहाँ उपदेश रूप से भगवान ऋषभ देव कहते हैं, बेटा ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठत्व का कारण है किसी भी पुण्य से किसी भी दान से श्रेष्ठ है ब्राह्मणों को सत्कार करना, ब्राह्मणों की सेवा करना। और ब्राह्मण से समझ ही गए यह तो आठ गुणों का उपलक्षण है। दो जगह च शब्द का प्रयोग किया गया है ताकि वह हमारे वेद को, जो हमारा ही पवित्र मूर्ति है वेद, वेद भगवान कहते हैं मेरा पवित्र शरीर है, दिव्य देह है वेद, और वो वेद को धारण करते हैं, वेद को धारण करते हैं। यह एक ब्राह्मणों का गुण है कि वेद को पढ़ते हैं, वेद को अंडरस्टैंड ज्ञान उनको होता है। और इसके अतिरिक्त भगवान हम बार बार चर्चा कर रहे आठ विशिष्ट गुणों का की चर्चा करते हैं जो ब्राह्मणों में होना ही चाहिए अथवा होता ही है। सत्व, सौम, दम, सत्य, अनुग्रह, तप, तितिक्षा और तत्वानुभव, गॉड रियलाइजेशन जिसे कहा जाए, आत्म साक्षात्कार से वह व्यक्ति संपन्न होता है। और ऐसे ब्राह्मणों का हमें हर एक तरह से सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, यहां तक कि देवता से भी श्रेष्ठ हैं। और तो देवता को हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन ब्राह्मण इस पृथ्वी के मूर्तिमान देवता है, इसको आप देख सकते हैं। देवता भी अभी कम से कम कलयुग में हम लोग नहीं दिखते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण है तो इस पृथ्वी के मूर्तिमान, मूर्तिमान मतलब विग्रह रूप में हमको आप देख सकते हो, देवता हैं, उनकी विशेष सेवा होनी चाहिए। अपने पुत्रों को कह रहे हैं कि बेटा मैंने राज्य का परित्याग किया, लेकिन तुम लोगों को उनके हाथ में सौंपा हूं, उनके गाइडेंस को जैसा बताएंगे वैसे शासन करना है, मनमाना शासन नहीं करना है। तो श्रील प्रभुपाद इसी बात को कहते हैं कि जो सभ्यता, जिस सभ्यता में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है, अथवा जो राज्य का, जिस राज्य का संचालन ब्राह्मणों के गाइडेंस के नहीं होता है, वह नष्ट हो जाता है, वह राज्य नष्ट हो जाता है, वह संस्कृति नष्ट हो जाती है, वह समाज नष्ट हो जाता है यदि ब्राह्मणों का सत्कार नहीं किया जाता है। इसी क्रम में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो भौतिक हमारा अभी जो परिवेश है, राज्य है, इसमें ब्राह्मणों का सत्कार नहीं किया जाता है, ब्राह्मणों का आदर नहीं किया जाता है। इसीलिए उत्कृष्ट रूप से लोगों में भोग वासना उत्पन्न हुई है, केवल बहुत उत्कृष्ट रूप में वासना है, इच्छा है भोग भोगने के, भौतिक भोग भोगने के लिए, और उसके लिए बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जाते हैं कि कैसे हम मैक्सिमम एक्सटेंड तक सुख को, भौतिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, इसके लिए बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना। और फिर उसके सर और भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है, राजपालने करके टैक्स होते हैं, प्रजा दुखी रहती है। इसका कारण है कि हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश, हम लोगों का जो कल्चर है ब्राह्मणों का सत्कार करना बंद कर दिया। यदि ब्राह्मणों का सत्कार किया जाएगा, प्रभुपाद जी कहते हैं ब्राह्मणों का सत्कार किया जाएगा, तो ब्राह्मण लोग बताएंगे गीता के अनुसार, गीता की बात बताएंगे, और गीता के अनुसार यज्ञ होगा, यज्ञ होगा तो यज्ञात भवति परजन्य, यज्ञ होगा तो परजन्य, परजन्य मतलब बादल, यज्ञात भवति परजन्य, परजन्यात अन्य संभव, बादल होता है, बादल होते वर्षा होती है, वर्षा होती है तो अन्न होता है, अन्नात भवन्ति भूतानि, और अन्न से हमारा पालन पोषण होता है। अन्न से मतलब कोई वेजिटेबल है, साग सब्जी, अन्न से मतलब जो खाद्य है, साग होता है उसको भी, चाहे फल होता है उसको भी अन्न के रूप में यहाँ भगवान कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब प्रभुपाद जी दोनों की बात है, मनुष्य और पशु दोनों जब बढ़िया से खाएंगे, पूरा पूरा अन्न खाएंगे, घास खाएंगे, तो अन्नाद भवति, जब पशु तथा मनुष्य प्रचुर अन्न खाते हैं तो वे बलिष्ठ होते हैं, पूरा पेट भर के, इसका बढ़िया से खाना चाहिए, पर्याप्त भोजन करना चाहिए, कम खाने की प्रसन्न कम खाना चाहिए, कम से मतलब है जितना जरूरत है उतना जरूर होना चाहिए। बलिष्ठ होते हैं और उनके हृदय तथा मस्तिष्क शांत रहते हैं। बढ़िया से भोजन मिला हुआ है तो मनुष्य एकदम शांत रहता है, तब हलचल नहीं, भूख लगने पर थोड़ा सा कठिनाई होती है भोजन करें, तब आध्यात्मिक जीवन बिता सकते हैं। जब बढ़िया से उनको समस्त बढ़िया से पौष्टिक और भोजन मिला हुआ है तो उनका हृदय शांत है, प्रभुपाद जी का मस्तिष्क शांत है, तब आध्यात्मिक जीवन बिता सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन बिताने में बड़ा आसानी होता है उनको, बड़ी सरलता से आध्यात्मिक जीवन माला लेकर जप कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस समय साधु लोग एक शब्द कहते हैं, आप लोग सुने होंगे, उसका अर्थ है कि भूखे भजन नहीं हो सकता है। कैसे हो, पूरा पूरा है कौन? तब भूख लगी हुई है, तब भगवान आप अपना कंठी जो हमको गुरु के माध्यम से दिए हैं आप ही रख लीजिए, और जप माला भी आपके पास ही रहे। तो हम प्रभुपाद जी तो यहाँ पर बड़े माने शिष्ट भाषा में कहते हैं, जब पशु तथा मनुष्य प्रचुर अन्न खाते हैं तो वे बलिष्ठ होते हैं, शारीरिक क्षमता मानसिक क्षमता बढ़ती है और उनके हृदय तथा मस्तिष्क शांत रहते हैं, तब वे आध्यात्मिक जीवन बिता सकते हैं जो जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य आध्यात्मिक प्रगति करना है, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या क्या परिवेश होना हमारे चाहिए? ब्राह्मणों का सत्कार, ब्राह्मण तो हम लोग को यज्ञ करने को बताएंगे, यज्ञ हम लोग उनके ब्राह्मणों के अनुसार करेंगे तो बादल होंगे, वर्षा होगी तो अन्न होगा तो हम लोगों को खाने को मिलेगा, संतुष्ट होंगे, जब संतुष्ट हो जाएंगे तो हम लोग खूब बढ़िया से भजन में लग जाएंगे, और यही मनुष्य जीवन की प्रभुपाद के जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा जो सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य है यह है कि भगवान को प्राप्त करना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। तो इसीलिए यहाँ पर ऋषभदेव भगवान उपदेश देते हैं कि ब्राह्मणों का सत्कार होना चाहिए, हमें ब्राह्मणों के गाइडेंस में रहना चाहिए। ठीक है, 5 मिनट समय है, कोई प्रश्न उत्तर है तो। एक ही दोनों के शब्द है, ब्राह्मण मतलब वैष्णव। देखिए ब्राह्मण का पता है ना, हम गुण बताए, भगवान ऋषभ देव 8 गुण की चर्चा करें, एक हम गुण की चर्चा सम, ब्राह्मण शब्द का प्रयोग करते हैं, सम सम मतलब समो मन निष्ठता बुद्धि। बुद्धि जब पूर्णतः भगवान में प्रतिष्ठित हो जाती है तो वह एक गुण है ब्राह्मण का। तो यदि इस स्तर पर कोई तथाकथित ब्राह्मण भी है जो पूरा पूरा उसका मन भगवान में लग गया है, भगवान के ही उसका जो चिंतन है ना, जो कॉन्शियसनेस का फ्लो, वो भगवान के चरण के चिंतन के जाता ही नहीं है, तो उसको आप क्या कहेंगे, ब्राह्मण कहेंगे कि वैष्णव कहेंगे? जिसका मन क्षण मात्र के लिए भगवान की सेवा भगवान की भक्ति के बाहर नहीं जाता है तो उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे, वैश्य कहेंगे, क्षत्रिय कहेंगे, कि शूद्र कहेंगे, कि वैष्णव कहेंगे, कि शैव कहेंगे, कि शाक्त, क्या कहना चाहेंगे? वैष्णव चाहे ब्राह्मण भी कहे धंतर नहीं, यहां तो ऋषभ ने ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया। अलग अलग इसे मत रखिए, दोनों को एक ही कर दीजिए। यहां पर नहीं तो आप फिर प्रश्न करेंगे कि यहाँ तो भगवान ने वैष्णव का शब्द का प्रयोग नहीं किया, न ब्राह्मण तुल्य ब्राह्मण, तो यहाँ ब्राह्मण से मतलब है वैष्णव, ब्राह्मण से मतलब है इस जो शब्द हम कह रहे हैं कि जिसका मन भगवान में लगा हुआ है। तो पता लग गया ना, कौन श्रेष्ठ है कि दोनों श्रेष्ठ है कि दोनों एक ही है?
नहीं,
हम तो कहते हैं जिसमें आठ ऋषभ देव कुल मिलकर ऐसे नौ गुण है, लेकिन आठ को डायरेक्ट रूप से वर्णन किए हैं। जिसमें एक गुण है वह ब्राह्मण है। अब जन्म से है कि कर्म, जैसे ही यह जो गुण अपना लिया है वह ब्राह्मण है। ठीक है, दूसरा कोई? ये भगवान ऋषभ देव खिलाने वालों को बता रहे हैं, खिलाने वालों को बता रहे हैं, तो खिलाने जा रहे हैं तो थोड़ा सा तो जांच लेना होगा ना। ये खिलाने वालों के सामने प्रवचन, हालांकि वहां ब्राह्मण भी बैठे हैं, वास्तव में कुछ तो ब्राह्मणों को डायरेक्ट भी वहां ब्राह्मण भी बैठे थे, बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे थे, पूरी प्रजा बैठी, गणमान प्रजा बैठी थी, उनके पुत्र बैठे थे। खिलाने वाले को भी थोड़ा सा दृष्टि रखना है और खाने वालों को भी अपना भी आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए कि हम खाने बैठे हैं तो ये सब है कि नहीं। और आसन पर बैठने से पूर्व क्या कहते हैं, आत्मनिरीक्षण कर लेना चाहिए कि कभी देख लेते हैं लोग तिलक ठीक है कि नहीं, मृत में कोई आमंत्रित किया हुआ है तो हमें भी देख लेना चाहिए कि ऋषभ देव कहते हैं कि हम में है कि नहीं। सत्य सम दम सत्य अनुग्रह तप तितिक्षा और भगवत भक्ति गॉड रियलाइजेशन। आप तो उत्तर दे ही दिए ना आपको कॉन्ट्राडिक्ट प्रभुपाद जी को, चाहे गौर मोहन डे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं ना हमको इस प्रशासन से करना है। ठीक है, हम देखिए भागवत में ऐसा भगवान ने ऋषभ ने कहा है, हम केवल रिपीट कर दिए। कुछ प्रैक्टिकल जजमेंट होता है तो आपको करना ही चाहिए, ऐसे इस जजमेंट में आप फेल भी कर जाएंगे पर जजमेंट नहीं होता, गलत व्यक्ति भी खा लिया आपने सम्मान कर दिया तो उतना हानि नहीं है, लेकिन कहीं क्वालिफाइड व्यक्ति का तिरस्कार हो गया तो बहुत हरा खराब है। तो यदि मान लीजिए कि हमारे जजमेंट फेल कर गया, कोई गलत आदमी भी हम गलत समझ कर किसी का सम्मान कर दिए, दान दे दिए, तो वो उतना हार्मफुल नहीं है, उससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन कहीं इस जजमेंट में क्वालिफाइड व्यक्ति को आपने तिरस्कार कर दिया तो वो रियली हवा के जीवन में हो जाएगा। लेकिन फिर भी भगवान ऋषभ देव या इसी शब्दों का प्रयोग किया, हम ऐसे एक भी शब्द नहीं जोड़े एकदम। वास्तव में भगवान ने दस गुणों की चर्चा, नौ गुणों की चर्चा की है, लेकिन सभी टीकाओं में प्रभुपाद जी भी आगे आठ की ही बात कहते हैं। हमारे दृष्टिकोण से नौ दिखता है, जिसमें एक वह वेद को धारण करता है, इसको प्रभुपाद जी इंक्लूड नहीं किए हैं। आठ ऐसे एक दो तीन आठ गिनाते हैं और दूसरे भी टीकाकार ही कहते हैं, लेकिन कम से कम आठ, सत्य सम दम सत्य अनुग्रह तप तितिक्षा और तत्वानुभव, यह शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो यहाँ ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद की।